स्वर्ग में प्रभु का जीवे वचन सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आशा करते हैं कि आप सब भी आज का अध्ययन करने के लिए हमारे साथ तैयार हैं। हमें पूरा विश्वास है कि इस अध्ययन से आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से प्रकाशित वाक्य पुस्तक का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इस पुस्तक का मुख्य विषय है भविष्य में कलीसिया और उसका स्वामी। इसके लेखक यहुन्ना हैं। तो आइए अपने वक्ता के साथ आज के इस अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
जंगली दरख्तों के दरमियान एक सेब के पेड़ के समान नजर आता है मुझे मसीह, नजर आता है मुझे मसीह। सारे संतों के बीच में तू, सारे संतों के बीच में तू। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। शारों का हाँ तू सोसन भी वादियों का, तू ही है नरगिस खास शारों का हाँ तू सोसन भी वादियों का। संतों में तू है अति पवित्र, संतों में तू है अति पवित्र। कैसे कामिल और शान से भरा, कैसे कामिल और शान से भरा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। खुशबू फैलाता है जहां में, तंगी मुसीबत और बदनामी में, तंगी मुसीबत और बदनामी में बना खुशबूदार तेरे समा, बना खुशबूदार तेरे समा। हम करूं मैं तेरी ए प्रभु अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवार के साथ रेडियो के निकट तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ और उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं, जो बाइबल की अंतिम पुस्तक है। पिछले अध्ययन में हमने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय का समापन किया और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 से अध्ययन को आरंभ करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। दयालु और प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिताजी आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हमारे जीवन में फिर से दिया है, ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठ करके भी एक साथ कर सकते हैं। आज जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक से अध्ययन करते हैं तो हमारी विनती है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें, ताकि जब हम आपके वचन में से सुनते और सीखते हैं तो निश्चित रूप से आपका वचन हमें से प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हमें से हर एक से बोलने और बातचीत करने पाए। हमारी विनती उन भाई बहनों के लिए है जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश और परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, दबाव में हैं। हमारी विनती है प्रभु जी कि आप उन्हें छुएं और उनके जीवन को स्पर्श करें, ताकि हर एक का जीवन आपके वचन के द्वारा चंगाई को प्राप्त करे, आत्मिक जीवन में लाभ को प्राप्त करे। आज हम सबों को इस वचन के द्वारा आशीषित करें। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आइए हम आगे बढ़ते हुए आज प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 से अध्ययन को आरंभ करें। लेकिन हम इस बात को जान लें कि अध्याय 20 का विषय है प्रभु यीशु का 1000 वर्षीय राज, और आज हम सबसे पहले इस अध्याय के परिचय को देखेंगे, पृष्ठभूमि को देखेंगे। अध्याय 20 में हम मसीह यीशु, शैतान, मनुष्य, महाक्लेश के भक्तजन, मृतकों का जी उठना, पृथ्वी और परमेश्वर के बड़े श्वेत सिंहासन से संबंधित 1000 वर्षीय प्रभु राज की चर्चा करेंगे। दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने कभी सोचा था कि अध्याय 20 अधिक महत्व का नहीं है, क्योंकि 1000 वर्षीय राज का धर्म शास्त्र में केवल यही उल्लेख किया गया है, अतः वे इस अध्याय को पूर्ण रूपेण अनदेखा कर देते थे। यह सच है कि 1000 वर्षीय राज का उल्लेख केवल इसी अध्याय में किया गया है, परंतु हमें यह तो स्वीकार करना होगा कि यह प्रभु यीशु के राज्य से संबंधित है। अध्याय 20 अंत समय से संबंधित 3 विचारधाराओं का विभाजन है। कुछ का मानना है कि प्रभु यीशु 1000 वर्ष पूरे हो जाने के बाद आएगा, मनुष्य सुसमाचार प्रचार करके प्रभु राज लाएगा। यह आशावादी विचार 19वीं शताब्दी के अंत में सर्वमान्य था। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि प्रभु यीशु के लिए विश्वव्यापी परिवर्तन होगा और संपूर्ण विश्वास प्रभु यीशु को ग्रहण कर लेगा। यह विचार पुराना हो गया है, क्योंकि 20वीं शताब्दी के प्रथम अर्धभाग में ही 2 महायुद्ध हो गए थे और मुद्रास्फीति, समाजवाद तथा विनाशकारी परमाणु बम का विकास हो गया था, जिसके कारण विश्वव्यापी विनाश निश्चित था। दूसरी विचारधारा के पक्षधर झूठे आशावाद में विश्वास नहीं करते हैं और उनका अधिक ध्यान प्रभु के आगमन पर था। इसके कारण वह विचार दब गया जो हजार वर्ष बाद प्रभु के आगमन का था। उनकी मुख्य चूक यह है कि वे प्रभु राज वरन संपूर्ण प्रकाशित वाक्य को शब्द जाल में बुन देते हैं। उनके अनुसार प्रभु राज वर्तमान में है। डॉक्टर बी.बी. वारफील्ड के अनुसार प्रभु राज स्वर्ग में है और महाक्लेश पृथ्वी पर है, परंतु मेरे विचार में प्रभु राज स्वर्ग में आदि से अनंत काल तक है। अधिकांश मनुष्य जो इस मत के अनुयायी हैं, वे प्रभु राज को वर्तमान में मानते हैं और प्रकाशित वाक्य के पुस्तक के तथ्यों को वे इतिहास में घट चुकी घटना मानते हैं। मेरे मित्रों, स्पष्ट कहूं तो मेरे विचार में इस विचारधारा, इस दृष्टिकोण के परिणाम वैसे ही हैं जैसे टुकड़ों को जोड़ जोड़ कर रजाई तैयार की जाती है। तीसरी विचारधारा के मानने वाले अध्याय 20 वरन संपूर्ण प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को यथावत स्वीकार करते हैं, जब तक कि संदर्भ में कुछ और ना कहा गया हो। उदाहरण स्वरूप अध्याय 19 का जो उदाहरण हमने देखा था, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय के 15 पद में, जब प्रभु यीशु फिर से आएगा तब उसके मुंह से चोखी तलवार निकलेगी। क्या इसका अर्थ यह है कि उसके मुंह में से तलवार निकली हुई होगी? मेरे विचार में धर्मशास्त्र स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। एफिसियों की पत्री 6 अध्याय उसके 17 पद में पौलुस लिखता है, और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है। यदि निर्देश ऐसा हो तो हम यूहन्ना की बात को गलत कैसे समझ सकते हैं? परंतु एक बात का ध्यान रखें कि आपकी व्याख्या के पीछे धर्मशास्त्र का तर्क हो। जी हाँ, आप अपनी इच्छा से धर्मशास्त्र की बातों को शब्द जाल में नहीं बुन सकते, जबकि यह आज की प्रचलित विधि है। इस तीसरी विचारधारा में हजार वर्ष का अर्थ हजार वर्ष ही माना जाता है और प्रभु यीशु का आगमन हजार वर्ष के राज्य का आरंभ है। अध्याय 20 स्पष्ट करता है कि प्रभु यीशु के पुनः आगमन तक हजार वर्षीय राज का आरंभ नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस अध्याय के प्रथम 9 पदों में हजार वर्ष 6 बार आता है। ऐसा बल देने का अर्थ है कि इस संख्या का महत्व महान है। आरंभिक कलीसिया प्रभु यीशु के वास्तविक हजार वर्षीय राज में विश्वास करती थी और जो इसमें विश्वास नहीं करते थे उन्हें विधर्मी माना जाता था। इसके बाद कलीसिया द्वारा हजार वर्षीय राज्य लाने का विचार उभरा। कलीसिया एक सिद्ध संसार बनाएगी और प्रभु यीशु को सब कुछ सीधा सीधा मिलेगा, परंतु धर्मशास्त्र का यह अंश तो ऐसा कुछ नहीं सुझाता है। वह दंड देने आ रहा है और सब कुछ यदि सुव्यवस्थित हो तो विद्रोह का दमन करके दंड देने तथा युद्ध करने की क्या आवश्यकता होगी? अभी अधिक समय नहीं हुआ है कि विश्वासियों का मानना था कि कलीसिया इस पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना करेगी। सन 1883 में जस्टिन ए स्मिथ नामक टीकाकार ने यह टिप्पणी की थी, परंतु दूसरी ओर सब बातों के उपरांत आज का मसीही विश्वास कैसी शक्ति है, यह समझ में आता है कि यह शुभ शक्ति जो विशाल पृथ्वी को अपने अधिकार में कर रही है, हजार वर्षीय प्रभु राज के पक्षधरों द्वारा पूर्णानुमानित मूर्खता में डावाडोल हो जाएगी। मेरे प्रियो, हम जो हजार वर्षीय राज से पूर्व मसीह के आगमन में विश्वास करते हैं, यदि सन 1883 में होते तो निराशावादी कहलाते, क्योंकि हमारा मानना ऐसा ही होता कि संसार बुरे से बुरा होता जाएगा और कलीसिया विधर्मी हो जाएगी। परंतु स्मिथ का मानना यह नहीं था, क्योंकि वह आगे कहते हैं, कहा गया है कि अगले 25 वर्षों में विकास की इस दर पर भारतवर्ष इंग्लैंड के समान पूरा मसीही विश्वासी हो जाएगा। चीन में 3 करोड़ विश्वासी होंगे और जापान अमेरिका की नाई पूरा विश्वासी होगा। वे कहते हैं कि पुराने धर्म मसीही विश्वास के प्रभाव के कारण पूरे के पूरे छलनी हो जाएंगे। ऐसा प्रतीत होता है कि वह दिन शीघ्र ही आने वाला है जब ये धर्म एक शक्तिशाली प्रहार के कारण गिर जाएंगे। मेरे प्रियो, इस बीच मसीही विश्वास के विरुद्ध प्रत्येक हथियार पकड़ने वाले के ही हाथों में टूट जाएगा। प्रभु के दाहिने हाथ ने तो उसे पहले ही विजय दिला दी है। उदाहरण के लिए आज बर्तानिया को ही ले लें, वह दुर्दशा में है। उस युग में तो बड़े साहस के साथ बातें करते थे, लोग विश्वास में स्थिर थे, परंतु आज उनकी बातें पहले जैसे नहीं है। प्रॉब्लम ऑफ इवल नामक अंग्रेजी पुस्तक के लेखक ने कहा है, यूरोप की सभ्यता या उसका वास्तविक नाम लें जो मसीही सभ्यता से उभरा है, प्रत्यक्ष रूप से विश्व विजय की ओर अग्रसर है। उसकी संपूर्ण विजय में बस कुछ समय की ही बात है, इसमें किसी को कोई संदेह नहीं। आज इस पर संदेह करने वाले कई लोग हैं। सच तो यह है कि यूरोप की सभ्यता या मसीही सभ्यता शराब में डूब रही है और उसका अधिकांश भाग विलोप हो चुका है। लोग सत्यता को छोड़ करके संसार की बातों में उलझ गए हैं। ये लोग प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 20 की गंभीरता को कम करते हैं। मेरे विचार में डॉक्टर बी वी वारफील्ड, एक महान विद्वान, ने कहा कि पृथ्वी पर प्रभु राज का कहीं संदर्भ नहीं है। केवल प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय ही एक ऐसा अस्पष्ट संदर्भ है। वह पुराने नियम पर ध्यान नहीं देते जहां कहा गया है कि दाऊद के एक वंशज द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करेगा। डॉक्टर रोद ने वर्षों पूर्व कहा था, हमारी कुंजी से नहीं खुलता है, सही कुंजी तो खो गई है। जब तक वह कुंजी हमारे हाथ में फिर से नहीं होगी, हमारी व्याख्या सफल नहीं होगी। बाइबल के विचार हमारी विचारधाराओं के कदापि समकच नहीं है। मेरे प्रियो, एक माननीय बाइबल कॉलेज के टीकाकार ने कहा, डॉक्टर आर एल डबनी, उसने अपने विद्यार्थी के समक्ष इस बात को स्वीकार किया था कि उन्होंने प्रभु यीशु के आगमन और उसके हजार वर्षीय राज्य के विषय में कभी ध्यान नहीं दिया था। थियोलॉजी के ग्रंथ रचयिता डॉक्टर चार्ल्स हॉर्ज ने लिखा, यह विषय संपूर्ण धर्मशास्त्र की भविष्यवाणी के सर्वेक्षण बिना पुराना नियम और नया नियम विचारणीय नहीं हो सकता। यह विषय भविष्यवाणी के विशेषज्ञ बिना संतोषजनक उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता है। यदि लेखक यह जानता है कि उसमें इस कार्य की योग्यता नहीं है, तो वह इस विषय में धर्मशास्त्र की भविष्यवाणियों की व्याख्याओं के ऐतिहासिक सर्वेक्षण पर निर्भर करेगा। आज तो सब कुछ बदल गया है। भविष्यवाणी में आज जोश से भरी रुचि है, परंतु मेरे विचार में आज डॉक्टर होर्ज जैसे स्पष्टवादियों की बहुत अधिक आवश्यकता है, जो कहें मैंने इस विषय को वास्तव में उस गंभीरता से नहीं पढ़ा जैसी आवश्यकता थी। दुर्भाग्य से भविष्यवाणी पर अनेक प्रचारक हैं जिन्होंने वास्तव में गहन अध्ययन नहीं किया है। यह वास्तव में महत्वपूर्ण एवं गंभीर विषय है। यद्यपि मैंने अपनी सेवा में इसका अध्ययन किया है और इस पर गंभीरता से मनन भी किया है जब इसे अनदेखा किया जाता था, परंतु मैं इसकी योग्यता का दावा नहीं कर सकता। मेरे विचार में यह एक खतरनाक बात है कि विचारक कलीसिया के उठाए जाने की तिथि निर्धारित कर रहे हैं। मेरे विचार में कलीसिया के उठाए जाने की घटना की कोई तिथि नहीं है। हो सकता है कि कल ऐसा हो या नहीं हो, हमें तिथि तो नहीं दी गई है, परंतु मंच की तैयारियां दिखाई दे रही हैं। मैं नहीं जानता कि भविष्य के लिए परमेश्वर की क्या इच्छा है, परंतु मैं यह अवश्य जानता हूं कि वह पूर्णतः तैयार है। मैं मानता हूं कि प्रभु यीशु आकर 1000 वर्ष के राज्य की स्थापना करेगा और महाक्लेश से पूर्व कलीसिया उठा ली जाएगी, क्योंकि यहां यूहन्ना की यही शिक्षा है। कुछ विद्वान है जिनका विचार मुझसे भिन्न है, और यदि आप भी मुझसे सहमत नहीं होते हैं तो आप एक अच्छी संगति में हैं। परंतु यदि आपको सही मार्ग पर रहना है और रहना चाहते हैं तो आपको मेरे साथ चलना होगा। पहली बात तो यह है कि शैतान के पृथ्वी पर से हटाए जाने तक प्रभु राज नहीं आएगा। जब तक शैतान पृथ्वी पर स्वतंत्र घूमता रहेगा तब तक आदर्श वातावरण नहीं बनेगा। दूसरी बात, प्रभु राज के पूर्व पृथ्वी को शाप मुक्त होना आवश्यक है कि रेगिस्तान गुलाब के समान खिल उठे, जैसा अभी नहीं हुआ है। तीसरी बात, प्रभु राज के आरंभ में पुराने नियम के भक्तों का जी उठना आवश्यक है। यदि वे महाक्लेश से पूर्व जी उठेंगे तो उन्हें प्रभु राज की प्रतीक्षा करनी होगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, और परमेश्वर उन्हें महाक्लेश समाप्त होने तक जीवित नहीं करेगा। दानियल नबी की पुस्तक 12 अध्याय उसके 1 और 2 पद में यह अति स्पष्ट किया गया है। लिखा है, उसी समय मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा, तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी ना हुआ और ना होगा। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर की पुस्तक में लिखे हुए हैं वे बच निकलेंगे। जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने अपनी नाम धराई और सदा तक अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। मेरे प्रियो, यह इसराइल के विषय में कहा गया है। महाक्लेश के बाद पुराने नियम के भक्तों का पुनरुत्थान होगा। आप देख सकते हैं यशायाह नबी की पुस्तक 25 अध्याय उसके 8 और 9 पद में, केवल प्रभु यीशु ही मृतकों को जिला सकता है। आप देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 21 पद में, 25 पद में और 28 से 29 पद में। अतः इस काम के लिए उसे आना ही होगा। और अब चौथी बात, महाक्लेश के भक्त जन पुराने नियम के भक्त जनों के पुनरुत्थान में सहभागी होंगे और वे 1000 वर्षीय राज्य में प्रभु यीशु के साथ होंगे। अंत में 1000 वर्षीय प्रभु राज मनुष्य को आदर्श परिस्थितियों में ले आएगा। यहां उन विचारकों के लिए प्रतिवाद है जो कहते हैं कि मनुष्य में ऐसा कुछ नहीं जो परिस्थितियों के कारण बदला ना जाए। मनुष्य असाध्य एवं महाभ्रष्ट पापी है। 1000 वर्षीय प्रभु राज के बाद भी मनुष्य परमेश्वर से विद्रोह करेगा। मनुष्य के मन का विद्रोह और उसकी भ्रष्ट दशा को समझना मनुष्य के बुद्धि से परे की बात है। यदि हम अपने आप को वैसा ही देख पाएं जैसा परमेश्वर हमें देखता है तो हम स्वयं से अत्यधिक घृणा करने लगेंगे। हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे लोग हैं और अत्यधिक भले हैं। जी नहीं, क्या ऐसा है कि हम भले हैं? 1000 वर्षीय प्रभु राज अनंत काल में प्रवेश करने से पूर्व मनुष्य की अंतिम परख है। 1000 वर्षीय प्रभु राज हमारे उस प्रार्थना का उत्तर है, तेरा राज्य आए। इस प्रार्थना में हम कहते हैं, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 10 पद में। मेरे मित्रों, यही उसका राज है जो वह 1000 वर्ष के लिए इस पृथ्वी पर स्थापित करेगा। दाऊद को इसी राज्य की प्रतिज्ञा दी गई थी। 2 शमूएल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 12 से 17 पद में, 23 अध्याय के 5 पद में परमेश्वर ने इस राज्य की स्थापना की शपथ खाई थी। भजन संहिता 89:34 से 37 में यही राज्य भजनों और भविष्यद्वक्ताओं में भविष्यवाणी की गई थी। भजन संहिता 2:45 में 110 में और यशायाह नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 1 से 5, 11 अध्याय उसके 1 से 9 और 60 पद में, 61 अध्याय उसके 3 से 62 पद में और तब 66 पद में। यरमिया नबी की पुस्तक 23 अध्याय उसके 3 से 8 पद में, 32 उसके 37 से 44 में, यहेजकेल नबी की पुस्तक 40 से 48 अध्याय में। दानियल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 44 और 45 पद में, 7 अध्याय उसके 13 से 14 पद में, 12 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, मीका नबी की पुस्तक 4 अध्याय उसके 1 से 8 पद में, जकरिया नबी की पुस्तक 12 अध्याय उसके 10 से 14 और 14 अध्याय के 21 पद में। इस राज्य की चर्चा सब भविष्यद् वक्ताओं ने की है, छोटे बड़े सब भविष्यद् वक्ताओं ने की है, एक भी ऐसा भविष्यद् वक्ता नहीं था जिसने इसकी चर्चा न की हो। उपरोक्त कुछ बड़े भविष्यद् वक्ताओं के संदर्भ हैं जो परमेश्वर के राज्य की भविष्यद्वाणी करते हैं, यह उनका एक बड़ा विषय था। यही राज्य, परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर आने वाला है। मेरे मित्रों, इससे स्पष्ट हो गया है कि प्रभु यीशु इस पृथ्वी पर 1000 वर्षीय राज्य करेगा और उसका राज इस पृथ्वी पर आने वाला है। आज मुझे और आपको इस बात को भली भांति समझ लेना है कि यह निश्चय ही होने वाला है। मेरे श्रोता मित्रों, इसी परिचय के साथ आज यहां पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे विश्वास है कि आज के इस वचन के द्वारा आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में। घबराहट की लहरों से डर, डूबूं दुख के सागर में। अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, अपने जोरावर हाथ को बढ़ा, मुझे अपने सीने से लगा, मुझे अपने सीने से लगा। हम करूं मैं तेरी है प्रभु, अपने जीवन भर इस जंगल के सफर में। गाऊं शुक्रगुजारी से मैं, गाऊं शुक्रगुजारी से मैं। तेरे पास पूरी करने को तेरे। मर्जी, अभी आ रहा हूँ तेरे पास, पूरी करने को तेरी मर्जी, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम, ताकि दे दूँ मैं काम को अंजाम।